पेपर में एक दिन तक नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। हाँ, कुछ प्रभावना नहीं हो रही, कोई पूछ तक नहीं रहा और जा तक नहीं रहा उनके पास में। अगर जाता होता तो पेपर में नहीं निकलता, फोटो तक नहीं निकला। और हमने एक बार जो है 400 रुपया की पत्रिका छपवाई तो लोगों के पत्र आने लगे वहां पर मंडी ममोरा में। 400 रुपए लगे थे कुल पत्रिका में, ऐसे ही एक कागज पे निकल गई थी पत्रिका चतुर्मास की। नहीं तो कम से कम 10-15 हजार की चाहिए, जब तो बड़े महाराज कहलाएंगे कि अच्छी 4 कलर में निकले, लिथो प्रिंटर अगर हो तो लिथो पे प्रिंट हो, ऐसी चाहिए। फिर भले ही उसकी कितनी दुर्गति हो, अब उनके यहाँ चिट्ठियां आ गई कि आपके पास चतुर्मास के लायक पैसा नहीं हो तो हम भेज दें इतने बड़े महाराज, और उनकी पत्रिका तक नहीं निकाली आपने, और हम ही ने कही थी उनसे कि आप मत निकालो। बड़े दुखी हुए वो, हमने कि दुखी मत हो, हमने तो हमारे मन से कर रहे ना, आप बाकी का सहन कर लो, थोड़ा सहन करना पड़ेगा। ऐसे प्रयोग करने में सहन करना पड़ता बहुत। अगर अपन एक बार कोई तय कर ले तो उसको बड़ी मुश्किल है आज के समय में। तो मैंने तो कई बार सोचा कि ऐसा कहने करने के लिए मना कर दूं, लेकिन अगर जैन समाज के पूरे पत्र जो पत्रिकाएं निकलती ना ये चतुर्मास चतुर्मास की, एक साल नहीं निकले तो 2-4 करोड़ रुपए बच जाएगा जैन समाज का। और अगर एक एक व्यक्ति को 1-1 लाख रुपए दे दो तो 100 आदमी को रोजगार मिल जाएगा, जैनियों को। हमें बता रहा हूं आपको, करोड़ों रुपए की पत्रिकाएं ऐसी फिक जाती हैं 4 दिन के बाद। लेकिन क्या करें, एक पैटर्न बन गया है। अगर नहीं छपवाते हैं तो क्रेडिट नहीं मिलती, बल्कि उल्टा जो है वो गड़बड़ी मानी जाती है। अब ऐसी स्थिति में भैया जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, काय को बेकार में परेशान हो, आप हो हमें परेशान करो काय। इसलिए हमने अच्छे से पढ़ा था वो प्रश्न। हाँ, अरे भैया ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताएं क्या? ये तो नहीं बताएंगे, छेदपाल पद्मावती वाला, वो ये वाला पढ़ देते हैं। छोटे महाराज सौगंध दिलाते हैं, अभी पूरा सुनो पहले उसमें, अभी अभी पूरा नहीं हुआ, वो मेरे ऊपर आएगी बात आखिरी में, देखना आप। इसलिए मैंने पढ़ लिया उसको पहले। छोटे महाराज सौगंध दिलाते हैं, एकदम सही करते हैं, बहुत सही करते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगना चाहिए कि हमारे त्यागी मुनि महाराज को आहार देना ऐसा वैसा काम नहीं है, ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं दे सकता। इससे जनता पर गलत नहीं बल्कि कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे मुनि महाराज तो नॉन वेज खाने वाले के यहाँ भी आहार ले लेते हैं। इसलिए आप कुछ टाइम के लिए तो उन्हें सौगंध करवाएं, मतलब मेरे से कह रहे हैं, मुझे सजेशन दे रहे हैं वो कि देखो इतना बढ़िया महाराज कर रहे हैं और आप इतने बड़े हो गए और बुद्धू के बुद्धू रहे। अभी तक आपने किसी को नहीं करवाया। एक व्यक्ति तो हमसे कहने लगे झांसी में, कहले महाराज जी क्या आपका नियम नहीं दिलवाने का नियम है क्या? हाँ, क्योंकि मैं किसी को नियम ही नहीं दिलवाता, लेकिन मुझे इतना विश्वास है अपने ऊपर कि मेरे हाथ पर ग्रास रखने वाला अभक्ष भक्षण नहीं करेगा, ये मुझे विश्वास है। और आज तक का इतने वर्षों का मेरा अनुभव है, जिसने भी ग्रास हाथ पर रखा है उसने अपने जीवन में कोई ना कोई त्याग अवश्य किया है। इतने बड़े आचार्य महाराज के मुंह से मैंने कभी भी किसी को नियम लेने के लिए कहते नहीं सुना। वर्षों से मैं देख रहा हूँ, 75 से तो मैंने उनको आहार देना शुरू किया था और 80 तक दिया, लेकिन मेरे से उन्होंने अगर एक भी बार ये पूछ लिया होता कि तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग है तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, मैं कहीं पर ऑफिस में बैठा दिखता, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। उन्होंने मेरे से नहीं पूछा, ये बात मुझे इम्प्रेस करती है। उन्होंने मेरे विश्वास पर मुझे छोड़ दिया, इतना बड़ा विश्वास करना आसान काम नहीं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अब इसके बाद बेईमानी, बेईमानी आपकी, आपके हाथ में, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम अपनी टेक तो छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? ये बात ठीक है कि एक व्यसनी व्यक्ति को पहले सोचना चाहिए कि वो किसको आहार दे रहा है। सप्त व्यसन का त्याग तो करने वाले से ही आहार लेंगे, ये तो बिल्कुल वेल नोन है, बहुत डिक्लेयर्ड है इसमें तो कोई। लेकिन वहां हम किसी से पूछें कि तुम्हारे सप्त व्यसन का त्याग है, और हमें अगर अंडे का ध्यान आ जावे तो हमारा फर्ज है कि हमें बैठ जाना चाहिए अंतराय मान करके।
इसलिए वहां तो इन चीजों के बारे में कह ही नहीं सकते, वहां इन चीजों का स्मरण भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं इन चीजों आपकी बात को मैंने पढ़ के सुना दिया। महाराज नियम दिलवाते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नियम नहीं दिलवाता हूं, ना मैं आपके कहने से दिलवा पाऊंगा। ये बात अलग है कि नियम देना लेना सब अच्छी चीज है, लेकिन मेरे नेचर में नहीं है। आप उसे अच्छा समझें या मुझे बुरा माने, मुझे दोनों मंजूर है, मुझे उसमें कहीं कोई, आप बताइए उनमें इसमें लिखा हुआ, इसलिए तो हमने फिर बाद में पढ़ा उसको। हाँ, मैं ना कभी पूछा है और ना मैं पूछ पाऊंगा, पर मुझे इतना विश्वास है, झांसी के अंदर 50 बच्चों ने, मेडिकल कॉलेज के सब ने मिलकर के मुझे पढ़गा लिया। दीक्षा दिवस था, उन्होंने 50 बच्चों ने पढ़गाया और खूब एंजॉय किया, बहुत मजे से आहार दिया सबने। और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर में चला गया, तो वहां पर लोगों ने कहा कि आपने उन बच्चों को क्या नियम दिलवाए हैं जो ऐसे ही बच्चों से ले लिए, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, मेडिकल में पढ़ते हैं, और क्या खाते होंगे क्या नहीं खाते होंगे। मैंने कहा मेरा तो काम ये है नहीं, वो जाने। और आप आश्चर्य करेंगे, मैं क्वेश्चन आंसर से वापस अपने कमरे में लौट नहीं पाया, वो 50 बच्चे मेरे कमरे में बैठे थे, आज के लिए नियम दीजिएगा, आज आपने हमसे आहार ले लिया, हमने तो कभी जिंदगी में दिए ही नहीं, कोई सहारनपुर का था, कोई मेरठ का था, कोई कहीं का था, झांसी मेडिकल कॉलेज में। तो मैंने कहा आज के लिए नियम क्या लेना, बोले जो भी आप कहेंगे, आज हम लोग मैस में नहीं खाएंगे। चलो ठीक है, आज हम लोग जो है फल फूल खा के रह जाएंगे, ऐसा कर लेंगे। हमने कहा ये सब तो ठीक है, पर अपन को सप्त व्यसन नहीं करना चाहिए। कोई कुछ नहीं बोला, बस मैंने इतना कह दिया, सप्त व्यसन नहीं करना चाहिए, बस अपने को मेन ये है, और आज कल ले लो कोई छोटा मोटा। आप आश्चर्य करेंगे कि 4 दिन के बाद एक बेटा उसमें से आया और उसने कहा कि महाराज आपने विश्वास करके मेरे से आहार ले लिया, जब तक मैंने आपको आहार नहीं दिया था तब तक मैंने अंडा भी खाया है और शराब भी पी है, लेकिन जिस दिन से आपको आहार दिया है और आपने नहीं पूछा हमसे, तब जब जब भी वो दोनों चीज़ें सामने आती हैं तो मन कचोटता है और याद आ जाता है कि एक ग्रास आपने मेरे से विश्वास करके लिया था, आपके विश्वास को तो नहीं तोड़ पाऊंगा मैं, आपने मुझ पर विश्वास किया था कि मैं ठीक आदमी हूँ, तब से मैं नहीं खा पाया हूँ ना पीता हूँ, और अब आपके सामने सौगंध लेता हूँ कि ये चीज़ें जीवन भर नहीं करूँगा। बताइएगा, गलत तो नहीं है मेरी प्रक्रिया, मेरा अपना सोच है। अब देखिए कब तक चलता है, मैं तो सोचता हूँ जीवन भर तक चल जाएगा शायद ये, पर मुझे इतना विश्वास, जिनको फ्रॉड करना है वो तो फ्रॉड कर ही सकते हैं, वो अपने साथ धोखा करेंगे, मेरे साथ क्या धोखा करेंगे। अगर वे मुझे आहार देकर के भी शराब पियेंगे तो वे अपने साथ धोखा करेंगे, मेरे साथ क्या धोखा करेंगे। मेरे साथ तो उनने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और मैं किसी की सात पीढ़ियां पूछने जाऊं, ये मेरा काम नहीं है कि आप कैसे हैं और कैसे नहीं हैं, मैं किस किस के बारे में हिसाब करूं। 20 मिनट का काम है, 25 मिनट का, और चुपचाप जो है डाला इधर और वापस आ गए, बाकी फिर स्वाश्रित हैं, पराधीन मुरीवर की चरिया। बस 20 मिनट की पराधीनता है 25 मिनट की, और वो बड़ी कष्टप्रद है। अगर अच्छा सहनन होता तो 4-4 महीने, और ठीक है एक आध बार कभी उठते, तो ये सब चीज़ें सामने नहीं आती। मुझे इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा लगने लगता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता हूँ, मैं क्यों नहीं नियम दिलवाता हूँ, पर क्या करें। अभी बच्चे आए थे दोपहर में, तो बोल रहे थे कि जब से जो है आपको आहार दिए हैं हमारे घर में तो बनना ही बंद हो गया आलू और प्याज। फादर ने कह दिया है कि जब तुम बच्चे लोग ने छोड़ दिया है तो हम भी छोड़ देते हैं, अब तो कोई लाता ही नहीं है घर में, बोले आहार आलू प्याज छूट। मैंने तो नहीं कहा, लेकिन फिर भी ये जो अपने आप होता है वो शायद मुझे लगता है कि बहुत आनंददायक होता है, इसलिए मैं उस प्रक्रिया को अपनाता हूं। लेकिन कोई अगर नियम दे तो वो भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन मैं नियम नहीं देता हूं। इसके पीछे मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि चाहे जैसे व्यक्ति से आहार ले लो, मेरा भी यही है कि भला व्यक्ति ही आकर के देगा, इतनी हिम्मत तो कोई कर ही नहीं सकता है। फिर भी पर मैं आपकी बात को नहीं कर पाऊंगा, मतलब जो आपने मेरे से अपेक्षा रखी मैं भी नियम दिलाना शुरू करूं, मैं कर नहीं पाऊंगा, क्षमा करें। जब अति विशिष्ट पुण्यात्मा जीव तीर्थंकर के जन्म लेने के पूर्व से 15 माह तक रत्नों की वर्षा होने पर कोई भी जीव दरिद्र नहीं बसता होगा, तब दान देने वाला ही नहीं होने पर दान का लाभ कैसे मिलता होगा। विनोबा ने लिखा कि अरे कितना अच्छा है कि किसी को भूख लगती है और तब मुझे आहार दान देने का मौका मिलता है ना। अगर किसी को भूख ही ना लगे तो आहार दान कौन देगा। ऐसे ये लिख रहे हैं कि सारे जीव जब वहां पर और प्रसन्नचित हो जाएंगे सबके पास खूब संपत्ति हो जाएगी, तो दान आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं कि क्या धन पैसे देना ही दान है? क्या क्या किसी को निश्चिंतता देना दान नहीं है? अभय दान नहीं है? मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहो, मेरी तरफ से आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, डोंट फियर, आई एम विद यू, क्या ये कहना डोनेशन नहीं है? ये तो बिल्कुल परफेक्ट डोनेशन है। आप कितनी भी चीजें किसी को दे दें और निश्चिंतता ना दें तो क्या होने वाला बताइए? तलवार उसके ऊपर लटकी है और सोने चांदी से लाद दिया उसके लिए और बढ़िया खाना पीना दे रहे हो, बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स खिला रहे हो उसको, तलवार लगी हुई है कि किसी भी दिन, तो क्या हो जाएगा? इससे कुछ लाभ होने वाला? अभय दान तो फिर भी रहता है, और भी दान के जितने भी भेद प्रभेद हैं वो अकेले लेन देन के नहीं है। किसी से दो शब्द आपने अच्छे कहे हैं उसको निश्चिंतता के, वह भी दान है। भैया औषधि से जितना लाभ नहीं होता उतना प्रेम से कह दो कि अच्छे हो जाओगे, कोई बात नहीं है, सिर पे हाथ फेर दो, आधी तबीयत ठीक हो जाती। कोई साइंस वाइंस में नहीं लिखा होगा ये कि प्रेम से हाथ फेरने पर आधी तबीयत ठीक हो जाती, लेकिन हो जाती। ये औषधि दान नहीं कहलाएगा क्या? क्या सिर्फ अकेली औषधि देने पर ही औषधि दान होगा? अगर आप ऐसा देखें तो ये सारे दान हमेशा चलते रहते हैं। ये पैसे वैसे की चीजें जो है वो सबके पास रहती हैं, तो कोई किसको काहे को देगा। धर्म क्या होता है ये अपन समझ चुके हैं, और जिस तरह नमोकार महामंत्र किसी भी परिस्थिति में बोल सकते हैं, उसी तरह कोई भी घरेलू कार्य करते हुए हम भक्तांबर या आलोचना पाठ बोल सकते हैं। भक्तांबर नहीं बोलना, भक्तांबर के लिए तो मुख शुद्धि तो होनी चाहिए, क्योंकि वो मंत्र की तरह ही है और भगवान की स्तुति है, तो कम से कम मुख शुद्धि पूर्वक। बाकी ग्रह कार्य करते समय कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो अम्मा लोग वो पीसती थी, आटा पीसती थी, तो बहुत सारे भजन और बहुत सारी विनती प्रभु पतित पावन की बोलते रहते थे ऐसे, उसमें वो नहीं है। पर मुख्य चीज क्या है कि मुख में कोई चीज होनी नहीं चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए मुख जिससे हम बोल रहे हैं, बाकी और नमोकार के लिए तो ऐसा है कि आप पवित्र अपवित्रो वा सुस्तो दो स्तो विवा ध्यायेत पंच नम ध्यायेत, बोलना नहीं लिखा, स्मरित उच्चरित नहीं लिखा, स्मरित ध्यायेत, स्मरण कर सकते ध्यान कर सकते किसी भी अवस्था में, लेकिन जब बोलना हो पाठ करना हो तो फिर मुख शुद्धि होना अनिवार्य। रात्रि में केवल अन्न ही क्यों नहीं खाते हैं बल्कि सब चीजें क्यों खाते हैं? अब ये आप ही बताओ। वैसे तो लिखा यही है कि चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए, खाद्य स्वाद लेह और पेय, अपन तो एक भी नहीं कर पाते हैं। देखो खाद्य का मतलब है जो चबा के खाई जाए सॉलिड, और सेमी लिक्विड जो चाट के खाई जाती लेह, और पेय लिक्विड और जो जिससे कि जायका बनता है मुंह का, ऐसे टेस्ट वाली चीजें जो है सौंफ सुपारी वगैरह वो सब कहलाती हैं स्वाद। ये चार प्रकार का भोजन है, कौन सा छूटा अपना? कोई नहीं छूटा। खाद्य में भी दो वैरायटी हो गई, खाद्य में चबा के खाने वाली एक अन्य की चीजें और एक दूसरी सिंघाड़े की बना ली, सिंघाड़ पाक, सिंघाड़े के सेव, इतने आइटम बनते हैं ढेर सारे, और पूरा पेट भर के खा लेते हैं, अकेला दाल रोटी सब्जी नहीं खाई, तो ये एक तरह से बेईमानी है। और तो बेईमानी करने का ढंग है, लेकिन भैया कम से कम एक प्रकार के भोजन का त्याग तो करना ही चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि एक प्रकार का भोजन रख लिया जाए चार में से तो भी काम चलता, पेय बस, दूध पानी रस ये ले लेंगे हम, बहुत जरूरत पड़ने पर, कोई ऐसा मर नहीं जाएंगे एक दिन नहीं खाएंगे तो, इतना भी अपन निर्णय ले लें तो बहुत आसानी से चल सकता और कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर करते हैं लोग, बन गया है पैटर्न, वो इसलिए बन गया। एक चीज़ और है, ऐसा नहीं समझना कि जिन लोगों ने अन्न छोड़ा है उनने कोई कुछ किया नहीं है, उनने भी बहुत किया है। क्या होता है, दाल रोटी सब्जी वगैरह बनाने में जितना आरंभ होता है, जितनी हिंसा होती है, वो उसकी अपेक्षा ज़्यादा होती है कि हमने कोई चीज़ पहले से बनी बनाई रखी थी रात में खाने लायक, और उसको चुपचाप 5 मिनट में निकाला और खा लिया। राजगीर रखा था तो राजगीर में दूध डाला, शक्कर डाली और खा गया, इस तरह से। तो वो उसमें कम आरंभ सारंभ है, इसलिए शायद लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया होगा कि दाल रोटी सब्जी बना करके खाने में, और ज़्यादा हिंसा होती है वनस्पति की और दूसरी चीज़ें, पर फिर भी वो भी छोड़ सकें तो बहुत अच्छा, उससे भी अपना काम चल सके। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो निस्सही बोलते हैं, प्रवेश करते हैं, ये क्यों बोला जाता है? इसके तीन अर्थ हैं। निस्सही एक प्रकार की सूचना है अपने प्रवेश की, पहली चीज। हाँ, कोई जो अदृश्य हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनको भी हम सूचना देते हैं कि हम भीतर प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी चीज, प्रवेश करते समय अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम क्षमा याचना कर रहे हैं। तो पानी गिर रहा है, बढ़िया, तो नजर मत लगाओ भाई कोई भी उसका, गिरने दो आराम से। तो मैं ये कह रहा था कि दूसरे नंबर पर हम क्षमा याचना करते हैं, निस्सही का ये है। और निस्सही जो है वो पुण्य स्थल में प्रवेश के अर्थ में भी है, मैं पुण्य के क्षेत्र में प्रवेश करता हूँ, पाप को छोड़ता हूँ, निस्सही का एक अर्थ ये भी है। तो इस तरह तीन अर्थ हो गए, अपने प्रवेश की सूचना देना और प्रवेश में होने वाली, दूसरे को होने वाली बाधा के लिए पहले से ही क्षमा याचना कर लेना, और पुण्य स्थल में प्रवेश कर रहा हूँ ऐसी मानसिकता बन जाती है, निस्सही निस्सही निस्सही, ऐसा कहते ही ऐसा लगने लगता है कि एक विशेष वातावरण में प्रवेश कर रहा हूँ, और मेरे प्रवेश करने से किसी को तकलीफ हो तो मैं क्षमा भाव से भरा हुआ हूँ और इंडिकेशन दे रहा हूँ कि मैं प्रवेश कर रहा हूँ। इस तरह ये तीन है, इस तरह है। मंदिर से निकलते सब के समय बोलें तो ठीक है, आवश्यक नहीं है, वो हम लोगों के लिए आवश्यक है। मुनि महाराज जब किसी गुफा इत्यादि में बैठ के ध्यान करते हैं तो जाते समय पूछ करके, निस्सही निस्सही वहाँ पूछना पड़ेगा वहाँ के देवों से, और बाद में थैंक्स देना पड़ता है, असही असही असही, हम इतनी देर यहाँ रहे, आपको कोई असुविधा हुई हो तो एक्सक्यूज और थैंक्स, हम जा रहे हैं, इंडिकेशन है ये इस बात का। तो वो असही असही कहना पड़ता है वो निर्जन स्थान पर, ये तो निर्जन स्थान है ही नहीं, इसमें तो सब लोग बैठे हुए हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ आवश्यक नहीं है वो असही असही बोलना। वैसे आपका पूछना ठीक है, जब प्रवेश करते हैं तो निस्सही, और जब उस निर्जन स्थान से बाहर निकलते हैं तब असही असही, वो इसके लिए है कि हम यहाँ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद और अब हम जा रहे हैं, ये इंडिकेशन है वापस जाने का, वो ठीक असही बोलते हैं उसके। दूसरा प्रश्न ये है कि सभी लोग कहते हैं जब भगवान के दर्शन करने जाएं तो पूजा में चावल साबुत चढ़ाना चाहिए, और जब हम गीली सामग्री में पूजा करते हैं तो वो चावल टूट जाते हैं, हम वही चावल चूटे चढ़ाते हैं तो हमको पाप नहीं लगेगा क्या? अब देखो, शक्य अनुष्ठान कहलाता है, जितना शक्य है उतना हमें करना चाहिए। हमारी भावना तो साबुत चावल चढ़ाने की है, लेकिन उसको धोने की प्रक्रिया सब लोग ठीक से नहीं कर पाते। एक्चुअली जिस तरह अपन धोते हैं चावल, धोने की वो प्रक्रिया नहीं है। मुझे एक पंडित जी थे उस समय, तो उन्होंने मुझे द्रव धोना सिखाया। मैंने एक दिन उनके सामने धोई तो मेरे हाथ से वो थोड़ा सा अगवन, ज़्यादा देर तक उसमें पानी डाल देंगे और ज़रा सा हाथ लगाएंगे तो सब टूट जाएंगे। उसमें तो ज़रा सा, मैंने उसकी तो टेक्निक है वो, और एक मलमल का कपड़ा होता है, जिस मलमल के कपड़े में, और फिर जल्दी से उसमें पानी डाल करके अलग करके फिर उस मलमल के कपड़े से उसको रगड़ा जाता है, फिर उसके ऊपर पानी डाल करके, तब फिर भी एकदम उज्जवल चावल और अखंड पूरे के पूरे, वो गल नहीं पाते हैं। तब ये अखंड चावल बनाने की प्रक्रिया ही बिल्कुल अलग है, गीले भी हो जाएंगे और अखंड भी रहे आएंगे, पर ऐसा हमेशा संभव नहीं है। अपन कितना भी कोशिश करते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं, फिर भी हम जब जब हम सावधानी रखें तो वे अखंड भी बने रह सकते हैं, सावधानी की आवश्यकता है इसमें। और अगर टूट जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं, उनको अपन उसी समय टूट जाते हैं, उसमें कितने ही सावधानी रखें अपन वो टूट ही जाते हैं। तो फिर उसमें से भी अपन ऐसा करें कि थोड़ा सा पहले कुछ उसमें से जो साबुत रह गए हैं उनको चुन लें और उनको अलग रख लें। देखिए ये सब तो बहुत मन की चीज़ें हैं, हाँ वो संभव नहीं है, और अगर ऐसा करना चाहें तो कर भी सकते हैं, पर उसमें ऐसा दोष नहीं लगेगा जैसा आप कह रहे हैं कि कोई पाप लगेगा, बस सावधानी भर रखें। और भी हैं क्वेश्चन या पूरे हो गए? क्या लिखा ये नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। हिंदी तो वैसे मैं पढ़ा हूँ पर वो समझ में नहीं आ रहा हिंदी भी, ये शायद और किसी भाषा में लिखा, देखना जरा। अरे भैया आपकी भाषा ही है,
आप पढ़ो,
आपकी भाषा आप ही पढ़ो भैया। हमारे समझ में नहीं आया, सही में नहीं आया। क्या कह रहे हैं आप?
हमने जात पूछी थी, जितने शराफ लोग हैं,
शराफ
शराफ
सोने चांदी का,
हाँ हाँ व्यापारी,
हाँ
चोरी लूट,
हाँ
और ज्यादा बैंक के नौकर,
हाँ
ज्यादा उनके बाल के सुने बाल खड़े हुए,
ये लोग बाद में या तो पहले मुनि रहे हुई हैं और या फिर जी बाद में मुनि बने, ऐसे इनके हैं ऐसे भाई कम जीवन। क्या हुआ एक बार कि बीरबल से पूछा अकबर ने, आप सुनाते ना उसको, है ना सुनाते हैं? अब मैं तो भूल जाऊंगा अगर तो। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, इन्हें एक बार कहा था, हाँ भैया जी ने सुनाया था। कैसा है वो, अकबर ने शायद बीरबल से पूछा कि आपके हथेली पर बाल क्यों नहीं है, है ना? तो बीरबल ने कहा कि देखो ऐसा है कि आप तो बहुत दान देते हैं लोगों को, इसलिए दान देते देते आपकी हथेली में बाल गायब हो गए। तो बोले और तुम्हारी हथेली में? बोले हमारी हथेली में तो आपसे खूब दान हमें मिलता है, तो हमारी लेते लेते अलग हो गए। और बोले बाकी लोगों के? बोले वो हाथ ही मलते रह गए इसलिए उनके भी बाल नहीं। हाथ मलते रहे वो कामे मिले ही नहीं कुछ भी, ऐसा ही होता है ना। तो महाराज का ये कहना है कि जो लोग मतलब मेरे ख्याल से इसको कोई अपन क्या समाधान ढूंढ सकते हैं, सिर पर कम बाल या ज्यादा बाल होना कोई, ये तो बहुत कहना चाहिए साइंस का है, हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। पर इनके अगर अपन दूसरे अर्थ लें तो जिस व्यक्ति को बहुत अधिक चिंता या बहुत अधिक जिम्मेदारी अपने ऊपर, उसका बोझ उसके ऊपर होता है, उसको भी देखने में आया है कि न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं मिलने की वजह से भी ये होता। तो महाराज तो हंसी हंसी में कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी सोने चांदी के काम करने वाले लोग हैं, हीरे जवाहरात के, उनके जो है सिर पर कमती बाल क्यों है। तो हमने उसका जवाब भी यही दे दिया कि या तो वो हीरे जवाहरात का काम करने से पहले और मुनि महाराज रहे होंगे, केश लॉन्च की आदत रही होगी उनकी, या फिर जो है आप जल्दी से उनको छोड़ छाड़ के केश लॉन्च करना चाहिए। ये क्या चीज है, अल्पायु कितनी उम्र तक होती है मतलब? अच्छा, वैसे तो अपने यहां पर अल्पायु वो कहलाते हैं जिनका कि अंतर मुहूर्त में ही मरण हो जाता, वास्तव में तो वो है अल्पायु उसको कहें। हाँ, ये जितने भी लब्धि पर्याप्त तक मनुष्य होते ना, सम्मूर्छन जन्म वाले, वो सब अल्पायु वाले कहलाते, उसको अल्पायु माना। हाँ, वो अपन ने फिर एक बना लिया कि 100 साल तक जी गए तो दीर्घायु, फिर 50 से 60 के बीच में जिए तो मध्यम आयु, और कोई 40 साल में ही मर जावे, एक्सीडेंट हो जाए या बाय द वे हार्ट फेल हो जाए, तो अपन कहते भैया बहुत अल्प आयु रही, थोड़े ही समय में मर गए। पर जैन आगम के अनुसार तो जो अंतर मुहूर्त की आयु लेके आते हैं वो अत्यंत अल्प आयु कहलाती, जघन आयु है वो अंतर मुहूर्त की। कितने चौके लगाकर आहार की व्यवस्था हो तो ऐसा नियम, अच्छा तो ऐसा नियम हो सकता है, संख्या कम हो तो? अच्छा पता नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जैसे ऐसा भी नियम कर सकते हैं कि हम 10 घर छोड़ करके 11वें में जाएंगे, 5 छोड़ करके 6वें में जाएंगे, ये है नियम का। मैं अपने दाएं तरफ जाऊंगा आज तो अपने दाएं तरफ, जिस तरफ अंजलि ली है उसी दिशा में मुड़ जाऊंगा, वहां जो चौके होंगे वहीं जाऊंगा, या मैं आज अपने बाएं तरफ जाऊंगा और दाएं तरफ जाऊंगा तो एक चौका छोड़ के दूसरे चौके में चला जाऊंगा, इस तरह तो विधि ली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं ली जाती है कि जब 10 चौके लगेंगे तो फिर मैं आहार के लिए उठूंगा, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से ये क्या पूछना चाह रहे हैं जिन्हें पूछा, इसी तरह का ऐसा नियम काय को लेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कितने हैं, तो ऐसा तो ले लेंगे कि हम 4 छोड़ के 5वें में जाएंगे,
या कि
हाँ, तो वो फिर आपका उस दिन का आलाप हो गया। जैसे आचार्य श्री नैना उसमें कुंडलपुर में थे, एक आईएएस ऑफिसर बनने वाला था, वो आया, उसकी बहुत मन थी कि आचार्य को आहार दें, तो दे नहीं पाया वो। और आचार्य उसने कहा कि महाराज इस बार आए और आपका आहार ही हमारे यहाँ नहीं हो पाया और हमारे जाने का समय आ गया, ऐसा कह दिया उसने। तो आचार्य ने दूसरे दिन यही नियम ले लिया कि वो जहाँ खड़ा होगा वहाँ चले जाऊँगा। उस दिन सुबह सुबह उसको घर से खबर आ गई कि तुम्हारा कोई उस पर एडमिशन कार्ड वगैरह पे क्या था, वो साइन वाइन होना है, उसके लिए तो आना बहुत ज़रूरी है शाम तक। तो वो सुबह 8 बजे वाली गाड़ी से बैठ करके उस दिन चले गया और आचार्य तो निकले कि वो जहाँ खड़ा होगा। तो आचार्य पूरे चौकों के सामने से और निकल करके 2 बार और फिर बाद में आकर के वापस बैठ गए। उस दिन आहार नहीं हुआ। बाद में हंसी हंसी में भैया वृत्ति के समय उन्होंने कह दिया कि अरे जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मिला ही नहीं, अरे महाराज वो तो चले गए, सुबह सुबह चले गए। तो ऐसा भी हो सकता है, कई बार व्यक्ति विशेष कर ले लें, कठिन है उसमें तो।